नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 4 में से 3 पदों पर जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी विजेताओं को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत दिल्ली सरकार ने दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बड़ौत तक दिल्ली नई अंतर राज्यीय बस सेवा शुरू करने की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नया जल निकासी मास्टर प्लान तैयार किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा पुस्तकालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित विशेष पुस्तक गैलरी का उद्घाटन किया। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने सेवा पर्व के अंतर्गत विकसित भारत के रंग कला के संग विषय पर 10 किलोमीटर लंबी कैनवास पेंटिंग बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। और दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय में आज हिंदी सम्मान सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने कुल 4 में से 3 पदों पर जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ एनएसयूआई को 1 पद पर जीत हासिल हुई है। आज घोषित परिणामों के अनुसार छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए कुल पड़े 69,000 से अधिक मतों में से 28,000 से अधिक वोट लेकर एबीवीपी के आर्यन मान विजेता रहे, जबकि एनएसयूआई की उम्मीदवार जोसलीन नंदिता चौधरी 12,000 से अधिक मत लेकर दूसरे स्थान पर रही। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए कुल प्राप्त 59,869 मतों में से 29,339 मत प्राप्त करके एनएसयूआई के राहुल झांसला विजेता रहे, जबकि 20,547 मत प्राप्त करके एबीवीपी के गोविंद तंवर दूसरे स्थान पर रहे। वहीं सचिव पद पर 23,000 से अधिक मत प्राप्त करके एबीवीपी के कुणाल चौधरी विजेता बने, जबकि एनएसयूआई के कबीर दूसरे स्थान पर रहे। संयुक्त सचिव पद पर डले कुल 59,000 से 919 मतों में से 21,825 मत प्राप्त करके एबीवीपी की दीपिका झा ने जीत दर्ज की और दूसरे स्थान पर रहने वाले एनएसयूआई के लवकुश भड़ाना को 17,380 मत प्राप्त हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की बड़ी जीत पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिषद के सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सभी पदाधिकारी युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर काम करने की योजना बना रही है।
मेरी ओर से सभी पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी बधाई। युवाओं का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के दिल्ली सरकार और बहुत सारे कामों पर आगे बढ़ेगी।
वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जीत पर हर्ष व्यक्त किया है। श्री सचदेवा ने कहा कि ये केवल एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि ये एबीवीपी की राष्ट्रवादी विचारधारा, संगठनात्मक शक्ति और गतिशील नेतृत्व में छात्रों के अटूट विश्वास का शक्तिशाली प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत दिल्ली सरकार ने दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बड़ौत तक नई अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप आईएसबीटी से चलने वाली ये सेवा दिल्ली यूपी कॉरिडोर की बस कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि प्रारंभ में रोजाना 6 एसी बसें दोनों दिशाओं में चलेंगी, जिनका किराया 32 रूपये से 125 रूपये तक निर्धारित किया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि जल्द ही अन्य अंतर्राज्यीय मार्गों पर भी ऐसी सेवाएं शुरू की जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzoneair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बढ़ती शहरीकरण चुनौतियों और बार बार होने वाले जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नया जल निकासी मास्टर प्लान तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज इस प्लान का अनावरण किया।
यह मास्टर प्लान आने वाले 30 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसका उद्देश्य राजधानी में जल भराव की समस्या का समाधान करना है। राजधानी में पिछली बार इस तरह का व्यापक जल निकासी मास्टर प्लान 1976 में तैयार किया गया था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस प्लान के माध्यम से शहर भर में होने वाली जल भराव की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।
उस समस्या का दिल्ली के लोग जो भुगत रहे थे, इतने वर्षों से प्लान बना है। इसमें ड्रेनेज सिस्टम अपने आप में ठीक होने से कम पानी के जो भराव की वाटर लॉगिंग की जो
वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 50 वर्षों में पहली बार किसी सरकार ने दिल्ली के लिए जल निकासी प्लान बनाने पर गंभीरता से काम किया है।
1976 के बाद से अब जाकर के 50 वर्षों बाद किसी सरकार ने सीरियस विजन के साथ दिल्ली का मास्टर ड्रेनेज प्लान को बनवाया है, और वो इसी मानसिकता के साथ बनवाया है कि दिल्ली को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी सरकार ने बहुत ही सीरियस नोट पे इसकी डिटेल्ड वर्किंग की है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम करेंगे।
वर्तमान में दिल्ली में लगभग 19,000 किलोमीटर लंबी जल निकासी प्रणाली है, जो 8 अलग अलग एजेंसियों और विभागों के अधीन है। इस मास्टर प्लान को सभी विभागों और एजेंसियों के परामर्श से ही तैयार किया गया है। यह प्लान न केवल दिल्ली की वर्तमान जल भराव समस्या का समाधान करेगा, बल्कि राजधानी को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक जल निकासी प्रणाली प्रदान कराएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित विशेष पुस्तक गैलरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि ये एक व्यापक पहल है जो प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और शासनकाल को दर्शाती है। श्री गुप्ता ने बताया कि इस गैलरी में एकत्र सभी पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष ने दिल्लीवासियों से आग्रह करते हुए कहा कि यदि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित कोई पुस्तक है तो उसे भी दिल्ली विधानसभा की पुस्तक गैलरी से जोड़ा जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने बीती रात दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संगठित अपराध को खत्म करने और गैंगस्टरवाद की कमर तोड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी दिल्ली, सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में 58 जगहों पर की गई। पुलिस ने एक बयान में बताया कि इस अभियान में 800 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। परिणाम स्वरूप 36 संदिग्धों को पकड़ा गया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोग कई गिरोहों से जुड़े हुए हैं। इस संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत कुल 7 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी, कीमती सामान और हथियार बरामद किए। जब्त किए गए सभी मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कटौती का सीधा लाभ किसानों को मिलना चाहिए। नई दिल्ली में कृषि मशीनरी और उपकरणों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी दर को 12% या 18% से घटाकर 5% करने से ट्रैक्टर और मशीनरी काफी सस्ती हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस लाभ को बीच में नहीं छोड़ देना चाहिए और 22 सितंबर से किसानों को इसका सीधा लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि ये लाभ छोटा नहीं बल्कि बड़ा है और इससे किसानों की आय में काफी फर्क पड़ेगा।
रियल टाइम में सीधे 22 सितंबर से किसानों को घटी हुई जीएसटी दरों का लाभ मिले, और ये लाभ छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। जैसे ट्रैक्टर की बात अगर हम करें तो 35 HP का जो ट्रैक्टर है उस पे 41,000 रुपए कम होंगे, 41,000। तो ऐसे ट्रैक्टर छोटे से लेकर बड़े पर ही ये लाभ 23,000 रुपए से लेकर 63,000 रुपए तक है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर की नई दरों को देखते हुए संशोधित परामर्श जारी किए हैं। नई जीएसटी दरें सोमवार से लागू हो रही हैं। परामर्श के अनुसार विनिर्माताओं, पैकर्स और आयातक 22 सितंबर से पहले विनिर्मित और बिना बिके पैकेज पर संशोधित मूल्य का स्टिकर लगा सकते हैं, लेकिन पैकेज पर पहले से छपा अधिकतम खुदरा मूल्य स्पष्ट दिखना चाहिए। एक रिपोर्ट।
मंत्रालय ने परामर्श में जीएसटी संशोधन लागू होने से पहले की पैकेजिंग सामग्री या रैपर के अगले वर्ष मार्च तक या पुराना स्टॉक खत्म होने तक उपयोग की अनुमति दे दी है। परामर्श में ये भी कहा गया है कि कंपनियां नया स्टिकर लगाकर या पैकेज के किसी उपयुक्त स्थान पर प्रिंट कर अधिकतम खुदरा मूल्य सही कर सकते हैं। सरकार ने डीलरों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को संशोधित जीएसटी दरों के बारे में सूचित करने के लिए विनिर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को समुचित उपाय करने को कहा है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और और सोशल मीडिया सहित सभी संभव संचार माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। मंत्रालय के अनुसार इस कदम से व्यापार सुगमता और उपभोक्ताओं का हित संरक्षित करने के प्रयासों में संतुलन बनेगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित होगा कि उद्योगों पर अनुपालन का अधिक बोझ न पड़े और जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। नई दिल्ली में फ्यूचर फ्रंटियर कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है।
प्रधानमंत्री ने कहा था कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य आसान नहीं है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अभी 22 वर्ष शेष हैं। पिछले 78 वर्षों में हम अपने देश को अभी तक विकसित नहीं बना पाए हैं। 2014 में हमारी रैंकिंग 11 थी, जो कि अब 5 है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा सेवा पर्व के अंतर्गत विकसित भारत के रंग कला के संग विषय पर एक विशाल कला महोत्सव कार्यक्रम में 35,000 से ज्यादा कलाकारों ने 10 किलोमीटर लंबी कैनवास पेंटिंग बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पहली बार हजारों कलाकारों ने मिलकर 10 किलोमीटर लंबी कैनवास पर चित्रकारी की है। उन्होंने कहा कि इस कैनवास पर युवाओं के सपने और विचारों को विविध रंगों के साथ उकेरा गया है। उन्होंने कहा कि ये एक अद्भुत रचनात्मक संगम का प्रतीक है।
10 किलोमीटर लंबा कैनवस विकसित भारत का थीम और हजारों युवाओं ने उसमें भारत के प्रति अपनी कल्पना के रंग भरे। सच में ये विकसित भारत जिम्मेवारी है युवाओं की, कैसा देश हो कैसा बनाना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि दिल्ली के कोने कोने से और देश से के बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ आए, उन्होंने अपनी कला के रंग यहाँ बिखेरे और नए भारत के स्वप्न का एक सच्ची तस्वीर हमें देखने के लिए मिली।
दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय में आज हिंदी सम्मान सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप महापौर जय भगवान यादव ने हिंदी को प्रशासनिक कार्यों की भाषा बनाने पर बल दिया और सभी कर्मचारियों से हिंदी के प्रचार प्रसार की अपील की। हिंदी सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कविता पाठ, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी और अन्य विजेताओं को पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। तीन मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आज दिनभर मौसम साफ रहा। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 4 में से 3 पदों पर जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी विजेताओं को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत दिल्ली सरकार ने दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बड़ौत तक नई अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नया जल निकासी मास्टर प्लान तैयार किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा पुस्तकालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित विशेष पुस्तक गैलरी का उद्घाटन किया और दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय में आज हिंदी सम्मान सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।